आयत नंबर 97 से देखेंगे। इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं, तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मग़लूब थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख़ है और वो पहुँचने की बुरी जगह है। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चारेकार की ताकत है और न किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और मुआफ़ फरमाने वाला है। वह मैं युहाजिर फी सबीलिल्लाह, जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा, वो जमीन में बहुत सी क्याम की जगहें पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका जर अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 97 से 100। इनका उन्वान है, माहौल से मुसालहत करने की बजाय माहौल तब्दील कर लो। इन आयत में अल्लाह ताला ने एक हकीकत की खबर दी, और वो क्या है कि मोमिन की फितरत आज़ाद है, और इंसान चाहता है कि उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आज़ाद माहौल मिले। इंसान किसी भी अकीदे या किसी भी दीन पर हो, उसकी फितरत का तकाजा है कि वो अपने ईमान के इजहार को बिल्कुल खुल्लम खुला बयान करे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बैरूनी हालात जो होते हैं वो इंसान को अपने अमल और अपने अकीदे और अपने दीन के ऊपर अमल करने से रोक देते हैं। ऐसे वक्त में फिर अल्लाह के लिए अपनी जगह को छोड़ना, इसको हिजरत कहते हैं। अगर देखा जाए तो हिजरत क्या है कि गैर मुवाफिक फिजा से निकाल कर मुवाफिक फिजा में अपने आप को ले जाना। किसी भी जगह आप हों और आपको लगे कि आप अपने दीन पर सही तरह से अमल नहीं कर पाते, वो कोई मुल्क हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई इदारा हो सकता है, वो कोई भी ऐसी जगह जहाँ दीन या दुनिया के नाम पे आप मजबूर कर दिए जाते हैं कि अल्लाह के दीन से मुसालहत कर लें, चाहे वो आपकी कोई जॉब हो, चाहे वो आपकी कोई तालीम हो, हर वो चीज़ जो इंसान को खुदा फरामोश ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करे, तो ऐसी जगह से फिर निकल जाना, लेकिन नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा हो, तो इसको अल्लाह ताला हिजरत कहता है। और यही है वो हिजरत जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम हबशा हिजरत की तरफ और मदीना हिजरत की तरफ देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हिजरत करना चाहते हैं और कर लेते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हिजरत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो हिजरत कर सकते हैं और करते नहीं है। अल्लाह ताला ने वो तमाम लोग जिनको हिजरत करने के खौफ ने हिजरत से रोके रखा है, इन आयात में एक बड़ा खूबसूरत असूल दे दिया, एक मोटिवेशन दिया कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा वो जरूर ही बहुत खैर पाएगा। इंसान जगहों की मोहब्बत में जीता है, इंसान मोहब्बतों के साथ और अपनी जगहों अपने लोगों के साथ उसको एक इस किस्म की उनसियत होने लगती है कि वो ये सोच लेता है कि मैं इसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। ऐसे तमाम लोग जब अल्लाह के जात को अपनी जिंदगी में सबसे अहम जगह देंगे तो फिर उनको कोई चीज अल्लाह के रास्ते में आने से नहीं रुकेगी, और वो लोग जो फिर हमारी तवज्जो के मुंतजर हों और वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से वहां नहीं निकल सकते और दुआएं मांगते हैं, तो फिर वो लोग जो आजाद माहौल में आंख खोले हुए हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सिर्फ खबरें सुन के या सिर्फ उनके हालात से आगाह हो जाने से बात नहीं बनती, इंसान को अमली तौर पे कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिसकी वजह से इंसानियत को दुखों से निकाला जा सके। बाज़ दफ़ा इंसान जब अपने माहौल को नामवाफिक देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि सारी दुनिया ही नामवाफिक है। ये ऐसी है कि जैसे दिल तो मेरा उदास है। जब आपका दिल उदास होता है तो आपको हर जगह उदासी दिखती है, और इस तरह इंसान फिर अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस इसी तरह जिंदगी के दिन पूरे करो। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दावत देता है कि अगर इस दुनिया में मक्का है कि जहाँ अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को पत्थर पड़ते हैं, तो इसी जमीन के ऊपर एक जगह यसरब भी है कि जिसको मदीना के तौर पर याद किया जाता है, कि जहाँ अल्लाह की दावत देने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। तो लिहाजा हर इंसान जहाँ अल्लाह के दीन का काम खुल के कर सके उसको वहां जाना चाहिए, इस बात के खौफ से अपने आप को आजाद करके कि वहां भी शायद मुझे पत्थर ही मिलेंगे। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में अगर पत्थर मिल भी गए तो क्या हुआ? हम हर तौर पे हिजरत करते हैं, हम माल के लिए हिजरत करते हैं, हमारी जॉब चेंज होती है तो हम हिजरत करते हैं, हम शादी की वजह से हिजरत कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने अजीज़ व अक़ारिब की वजह से हिजरत कर लेते हैं, लेकिन असल हिजरत वो है जो बंदा अल्लाह के लिए करे, क्योंकि इसके बाद के नतायज जो है वो यकीनी है। वह इज़ा दरब तुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जो جناح نن تقصرو من السلا، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہے، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش بسبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل ہار کر نہ بیٹھ رہو، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تمہاری طرح تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 101 سے 104، ان کا عنوان ہے موت کے کنارے پر کھڑے ہو، پھر تھوڑا سا سلیش ڈالیں گے آپ، رب کو یاد کر لو۔ ان آیات میں ہم نے ایک ایسی نشانی دیکھی اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے اوپر غور کرنے سے انسان نماز کے بارے میں پھر مکمل شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز ہر حال میں اور ہر جگہ فرض ہے، اور اگر نماز معاف ہوتی تو میدان جنگ میں معاف ہوتی۔ ان آیات میں ہم کو صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب دشمن سامنے ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ایسے وقت میں اگر نماز آ جاتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ نماز ادا کی جائے بلکہ یہ بھی کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ حیرت ہوتی ہے سن کے، بعض لوگ صرف اس ایک آیت کو پڑھے تو کہیں گے اسلام کیسا نعوذ باللہ نان سینس قسم کا ریلیجن ہے کہ سامنے دشمن ہے اور ہتھیار چل رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلے اتنی بھی بات نہیں تھی اگر اس نماز کو الگ الگ جس کا جو دل چاہے پڑھ لے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نماز کی اصل روح کو پا لے گا اس کو یہ بات ایک نعمت لگے گی۔ جب انسان اپنی ذاتی کوششوں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتا تو اس کو وہ نماز میں اللہ سے حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کی ضرورت جتنی میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی تو شاید کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ایک بندے کا میدان جنگ میں نماز پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی کتنی ضرورت ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ اگر میری موت آخری لمحے آ بھی چکے ہیں تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ رہ گئی بات کہ پھر جماعت سے کیوں پڑھنی، تو یہ بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جس طرح نماز بندے کو اجتماعیت سکھاتی ہے اس طرح کوئی اور نہیں سکھاتا۔ میدان جنگ میں جہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اللہ کے سپاہیوں کے اتحاد اور ان کے ایک لیڈر کی بات کو سننے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جماعت سے نماز پڑھا کے امیر کی اطاعت سکھائی گئی، اور بعض دفعہ ہتھیاروں اور تلواروں سے وہ بات نہیں ہوتی جو دشمنوں کے دلوں پہ ایسے ان یوژل واقعات دیکھ کر ہونے لگتی ہے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا لوگوں نے، کافر کہنے لگے ہم نے ایک ایسا وقت کھو دیا کہ جس وقت ہم حملہ کر سکتے تھے، دیکھو یہ تو جماعت میں تھے۔ کہا اچھا اب اگلی جو نماز آئے گی اس کے لیے ہم ان کو پہلے سے ہی پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو دشمنوں کی سازشوں کو ہم سے پہلے جاننے لگتا ہے، اس نے فوراً آیتیں بھیج دی کہ اب تم ایسا نہ کرو۔ ان کے ہی لوگوں کے قول تھے کہ ابھی اس ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو ان مسلمانوں کو اپنی اولادوں سے بھی پیاری ہے۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں کا رخ دیکھیں، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا عورت اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی؟ اجتماعیت نماز سے ملتی ہے، جب ہماری نماز جماعت سے ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے اندر تفرقے آنے لگتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بوجھ سمجھ کے پیش کرتے ہیں، نماز پڑھ لو ایک کی بجائے 27 کا ثواب ہوگا، لوگ اتنی رغبت نہیں کرتے، دنیا اتنی ہے ان کو ایک ہی بہت ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی بہت ہے ہم 27 کیوں لیں۔ لیکن جب آپ نماز کی روح بیان کریں گے، جب ایک بستی میں رہنے والے مسلمان اپنے گھروں سے خاص وقت کے اوپر مسجدوں کی طرف جانے لگیں گے تو کیا سڑکوں پہ پرش نہیں ہوگا؟ کیا دن میں 5 بار یا کم از کم ورکنگ آورز میں آپ دیکھیے تو 3 بار ظہر، عصر اور مغرب اگر نان مسلم لوگ ہماری گاڑیوں کے رخ مسجدوں کی طرف دیکھیں تو کیا وہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے کیا ہوا؟ آج ہم نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ اسکول گوئنگ ٹائم ہے، یہ اسکول کے جانے کا وقت ہے، آنے کا وقت ہے، یہ ٹریفک ٹائم ہے۔ دنیا کے اسکولوں سے جہاں سے مادہ پرستی ملتی ہے وہاں جانے کے وقتوں میں تو سڑکوں پہ رش ہو، اور مسلمان جس کو اللہ کے گھروں میں جا کے دن میں 3 یا 5 بار جا کے उसको जो एक रूहानियत मिलनी थी उस वक्त सड़कों पे कोई रश ना हो। ये क्या बताता है कि उम्मत मुस्लिमा सो रही है, उम्मत को भी इज्तमाईयत का वो दर्स नहीं मिला। आज हम जो टूटे टूटे रहते हैं उसकी बड़ी वजह ये है कि आज हमने इज्तमाई जिंदगी जीना सीखा ही नहीं। आज हमारा दीन इनफरादी दीन है, मेरा गम है, मेरी खुशी है, मेरे सुबह से शाम तक के मामूलात मेरी खुशियों को जमा करने के, मेरे घर में खुशी आए, मेरे घर में आटा नहीं मुझे इसकी फिक्र है, मुझे इसकी कम फिक्र है कि कितने और घरों में आटा नहीं, मैं बीमार हूँ मेरा ये गम है, मुझे ये गम नहीं कि कितने और लोग बीमार हैं। इस्लाम ने एक पूरा सोशल सेटअप दिया और नमाज दिन में 5 बार इसका यकीन दिलाती है कि लोगों तुम हर हाल में अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले बन जाओ। अल्लाह करे कि हम वो रूहानियत बेदार कर सके इन इबादात की कि कहने की बजाय लोग बुलाने वाले बन जाएं कि हैया अलस सला और हैया अलल फला। जिसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है क्या उसको जरूरत पड़ती है किसी के कहने की कि आओ नमाज पढ़ो। दोस्ती होती है किसी दोस्त से किसी साथी से कैसा दिल अटका रहता है हर लम्हे उसी के साथ। घर में है तो फोन, वहां पहुंच के तो आने को दिल नहीं चाह रहा, आ गए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे रब्ता हो रहा है। जिस बंदे का दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है उसको फिर हर लम्हे अल्लाह ताला की जरूरत पड़ती है। नमाज बंदे को इत्तेहाद और इज्तमाईयत सिखाती है और यही वो चीज है ये जो बंदे मोमिन को अल्लाह ताला के करीब करती है। जितना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होगा उतनी ही इंशाल्लाह उसकी मदद भी आएगी। और ये जहन में रखिएगा कि जितना इंसान नमाज के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है उतना ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद उसके पास आती है। खास तौर पे अल्लाह सुभाना ताला की एक ऐसी जमात या वो जमात जिसे अल्लाह ताला को कोई बहुत बड़ा काम कराना हो तो उनके दिल तो वाकई नमाजों के साथ जुड़े होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें नमाज की असल रूह को पाने की तौफीक अता फरमाए और यही वो चीज़ है जो बंदे को अल्लाह के साथ करीब करती है। आगे चलते हैं आयत नंबर 105 से। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिलहक लितहकुम बैनन्नास। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में इस चीज के मुताबिक फैसला करो जिससे अल्लाह ताला ने तुमको शनासा कर रखा है और खयानत करने वालों के हमायती न बनो और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है। और इनकी तरफ से झगड़ा न करो जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं। यकीनन दगाबाज गुनागार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। यस्तगफून मिनन नास। वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह ताला की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं इस वक्त भी अल्लाह इनके पास होता है, इनके तमाम आमाल को तो वो घेरे हुए है। ये थी आयत नंबर 105 से 108। इसका उन्वान है गिरोह परस्त होने की बजाय हक परस्त बन जाओ। ये आयतें और इससे अगली आयतें जो हैं इनके पीछे एक वाक्या है और वाक्या कुछ इस किस्म का था जिसका 2-3 जुमलों में अगर लुबे लुबाब कर दिया जाए कि एक ऐसा वाक्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया कि एक शख्स ने जुर्म किया और उस जुर्म को दूसरे के सर पे मढ़ने की कोशिश कर दी। उसकी कौम के लोग जानते थे कि वो मुजरिम है और दूसरा शख्स जो है वो बेगुनाह है लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये हमारी फैमिली या हमारी बिरादरी का शख्स है, हमारे गिरोह का शख्स है, छूटा होने के बावजूद भी उसका साथ दिया। अल्लाह ताला को इस बात पे इतना गजब आया और अल्लाह को बहुत गजब आता है जब किसी पे जुल्म होता है। जब कोई किसी के साथ नाहक जुल्म करता है तो अल्लाह ताला ऐसे वक्तों में फिर उसकी बेगुनाही साबित करते हैं। पूरा एक रुकू बल्कि उससे ज्यादा आयते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई कि ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह की निगाहों में कितना बुरा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने गिरोह बनाए, हमारी बिरादरियां बनाई, हमारे खानदान बनाए, इज्तमाईयत इंसान की जरूरत है लेकिन ये सोच लेना कि अगर मेरे खानदान या मेरी बिरादरी कोई शख्स अगर कोई गलत काम करता है तो वो फिर भी ठीक है, ये बात अल्लाह के गजब को बुलाने वाली है। बस दफा हम लोग भी इतना ज्यादा बरादरी परस्त हो जाते हैं जितना कि हमें खुदा परस्त होना चाहिए। अगर आप इसके टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके गिरोह परस्त की बजाय बिरादरी परस्त लिख लें तो बात इंशाल्लाह ज्यादा अमूमी अंदाज में समझ में आएगी। हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं बेहतरीन बिरादरी पे हूँ, क्या ये सच है? ठीक है, खुद को हक पे समझना कोई बड़ी बात ना होती अगर ये ना सोच लिया जाता कि दूसरे सारे जो हैं मुझसे अदना हैं। जब इंसान ये कहता है कि हम अपनी बिरादरी से बाहर नहीं जाते, हम अनपढ़ को दे देंगे अपनी बेटी लेकिन हम बिरादरी से बाहर नहीं जाएंगे, ये क्या है? अपनी बिरादरी का नाम बच्चियों को कई के साल की उम्र तक शादी के काबिल होने के बावजूद शादी से रोक दे, क्या ये गिरोह परस्ती है, बिरादरी परस्ती है या हक परस्ती है? अल्लाह ताला ये चाहता है कि लोग मिलें। पढ़ेंगे सूरत हुजरात में इंशाल्लाह इसका तज़किरा आएगा कि अल्लाह ने ये तारुफ के लिए दिया। ये एक तारुफ है, तुम में से हर एक बंदा किसी भी तरह चले, यहाँ तो खानदान की बात एक वाक्य के तहत है लेकिन यहाँ से सबक भी मिलते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग दीन का काम करने के लिए भी मुख्तलिफ ग्रोहों में काम करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर इंसान उस काम पे करता रहे, लेकिन ये सोच लेना कि जो बात मेरे गिरोह या मेरे प्लेटफॉर्म या मेरे इदारे से बाहर है वो बात ठीक ही नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा का यही मिजाज है जिसने लोगों को खुद पसंद बना दिया कि वो बात जो मेरी पसंद के शख्स से निकल रही है वो बात तो बहुत अच्छी है, जिस पे मेरे नाम का झंडा लगा हुआ है, जहाँ मेरा बैनर लगा हुआ है, जहाँ मेरा स्लोगन लगा हुआ है, जहाँ मेरी बात है, बस वो ठीक है। इन पूरी आयात में अल्लाह ताला ने इसी बात को उभार दिया कि वो शख्स जो किसी को सच्चा होने के बावजूद छुटला दे सिर्फ इस वजह से कि वो उसका नहीं, और किसी झूठे को सिर्फ इसलिए सच्चा कर दे कि वो दूसरा है, तो ऐसा शख्स फिर एक खयानत का मुर्तकिब है। और ऐसे शख्स के सीने में अल्लाह ताला ने जमीर नाम की जो चीज रखी है वो इंसान को अंदर से करचोके लगाती है कि देखो तुमने जुल्म किया। हकीकत ये कि हम जब भी किसी को ना हक सताते हैं या उस पर जुल्म या ज्यादती करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इसको जाने ना जाने, लेकिन हमारा दिल अंदर से हमें बता रहा होता है कि हमने ज्यादती की। ऐसा शख्स जो है जब अल्लाह के कलाम से जुड़ता है तो उसका सीना खुलने लगता है। इसीलिए आप देखिए कि अरब लोग थे कि जो बिरादरी परस्त थे और ग्रोह परस्ती इतनी ज्यादा थी कि इतनी इतनी बात पे वो अपने आप को दूसरों से ऊंचा करते थे, कबीलों में बटे हुए थे, लेकिन फिर उनको अल्लाह ताला ने एक अमूमी वहदत में परो दिया। और वो क्या था कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। अगली आयतों में मजीद कुछ बात वाजे होगी। हां तुम हाउलाई जादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया, हाँ तुम तो ये हो तुम लोग के दुनिया में तुमने इनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कयामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा, और वो कौन है जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा। व मैं यामल सुअन, जो कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से इस्तगफार करे तो वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला पाएगा। व मैं यकसिब इस्मन फइन्नमा यकसिबुहु अला नफ्सी, और जो गुनाह करता है इसका बोझ उसी पर है, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और पूरी हिकमत वाला है। जो शख्स कोई गुनाह या खता करके किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे, इसने बहुत बड़ा बुख्तान लगाया और खुला गुनाह किया। वलौ लफदलुल्लाहि अलैक व रहमतुहू, अगर अल्लाह ताला का फजलो रहम तुझ पर ना होता तो इनकी एक जमात ने तो तुझे बहकाने का इरादा कर ही लिया था, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह करते हैं, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने तुझ पर किताबो हिकमत उतारी है और तुझे वो सिखाया है जिसे तू नहीं जानता, और अल्लाह ताला का तुझ पर बड़ा ही भारी फजल है। ये थी आयत नंबर 109 से 113। इसका उनवान है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी तरह एक दूसरा टॉपिक भी है साथ के, अल्लाह की अदालत में बच ना सकोगे। बेगुनाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी ने वो नहीं किया जो उसको साबित करना कि उसने किया, और किसी बंदे को हक पे होते हुए ना हक पे साबित करना, ये वो जुर्म है जिसके लिए अल्लाह ताला आखरत का इंतजार नहीं करता। दुनिया में ही ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जरूर इस बात का एहसास दिलवाता है, अगर किसी इंसान ने कभी किसी पे कोई ज्यादती की हो और एहसास हो जाए और वो अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह ताला उसको पहले से ज्यादा मोहब्बत के साथ अपने रास्ते पे ले आते हैं। हम सब इंसानों की दुनिया में रहते हैं, खानदानों में रहते हुए, घरों में रहते हुए, मैं खास तौर पर यहाँ बात करूंगी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की। जब एक घर में मुख्तलिफ खानदान होते हैं, सास भी है अपनी फैमिली के साथ, बहू की फैमिली भी शामिल हो गई, बाज दफा दो तीन देवरानी जिठानियां होती हैं, ये लम्हे बहुत नाजुक लम्हे होते हैं। बहुत आसान होता है कि करे कोई और भरे कोई, गलती आपसे हुई इल्जाम दूसरे पे लगा दें। बाज दफा बड़ा बंदा गलती करता है और बच्चे के नाम पे इल्जाम लगा देता है। बाज माए बच्चों का बहाना करके कई दफा कई चीजों से अपने आप को दूर कर लेती है, उनको पता होता है इस बच्चे ने कौन सा बोलना है, चीज खुद से टूटी नाम बच्चे का लगा दिया, सोने को दिल चाहा तो बच्चे का नाम लगा दिया ये सो नहीं रहा। इस तरह की छोटी चीजें जब इंसान की जिंदगी में आती हैं तो असल में वो इस बात का इजहार होती हैं कि वो आखिरत के दिन को सामने नहीं लाता। छोटी छोटे मामलात में अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी गलतियों के इल्जाम दूसरों पे तो नहीं लगाती। हाँ कोई गलती करे फिर उसको मान ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस शख्स को आप क्या कहेंगे जो अपनी गलती को सही साबित करने के लिए मजीद गलतियां करने लगे और अपनी हिमायत में दूसरे और लोगों को तैयार करने लगे। यहाँ जिस शख्स का जिक्र है उसने कुछ ऐसा ही किया था, ऐसे लोग आज तो गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं लेकिन कल अल्लाह की अदालत में वो नहीं बचेंगे अगर उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा न की। इसी तरह एक और चीज जो हमने इसमें देखी इस वाक्य में कि जिस पे इल्जाम लगा था वो यहूदी था और जो इल्जाम लगाने वाला था वो मुसलमान था, लेकिन अल्लाह को किसी का यहूदी होना उसके मुजरिम होने की दलील और किसी का मुसलमान होना उसके बेगुनाह होने की दलील नहीं मिली। इसलिए इंसान जिंदगी भर कभी ऐसा ना करे कि किसी पे इल्जाम लगाए। यहाँ एक वाक्य बड़ा खूबसूरत है, मैं आपसे मुख्तसर जिक्र करना चाहूंगी। सही बुखारी की रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से आता है कि एक औरत थी काले रंग की सियाफाम, किसी कबीले की लौंडी थी, बहुत साल से उनकी खिदमत करती थी, अच्छे दिन गुजर रहे थे। इतने में उस कबीले के सरदार की बेटी का या उसका किसी का भी कोई हार चोरी हो गया। जब हार चोरी हुआ तो लोगों ने उस औरत पे इल्जाम लगा दिया। عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والے ملازموں کے اوپر ہی ہمیشہ نظر جاتی ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ الزام لگایا بلکہ اس عورت کی تلاشی لی اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں کی تلاشی لے لی. حالانکہ یہ عورت جو تھی یہ بے گناہ تھی. اس کے دل میں اتنا اس چیز سے میل آیا, اس نے باوجود کفر پہ ہونے کے اللہ کو اپنی زبان میں پکارا, رب تو اگر ہے تو میری بے گناہی ثابت کر دے, اور ایک دفعہ میری بے گناہی ہو گئی تو میں اس قبیلے میں نہیں رہوں گی. دل کھٹا ہو گیا نا. ہوا کہ اللہ کی قدرت سے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک چیل یعنی عقاب آیا, ایگل, اور اس نے وہ ہار جو تھا زمین پہ پھینک دیا. وہ ہار اس طرح کا تھا جیسے چمڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں. پہلے دور میں قبائلی لوگ ایسی چیزیں پہنتے تھے. کسی بھی وقت میں وہ کہیں اس لڑکی نے غسل کرتے وقت اس ہار کو دریا کے کنارے رکھا تھا, وہاں سے وہ عقاب جو تھا اٹھا کے چلا گیا. اب وہ کہیں بھی پھینک سکتا تھا, لیکن اللہ ایک بے گناہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے سب کے بیچ میں اس کو گرایا. جب ہار سب کے سامنے گرا, لوگوں نے جان لیا کہ ہمارا الزام جھوٹا تھا, اس عورت یہ عورت سچی تھی. بہت شرمندہ ہوئے, معافیاں مانگی, کہنے لگی میرے پر احسان کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو, اب مجھے تم میں نہیں رہنا. میرا دل کھٹا ہو گیا, کہا خوشی سے جاؤ, لے دے کہ اس کو چیزیں رخصت کر دیا. اب وہ عورت تھی اور اس کا رب تھا. مدینہ کے قریب یہ قبیلہ رہتا تھا. ہوتے ہوتے یہ عورت مدینہ میں آ گئی اور ایک دن مسجد نبی کے آگے سے گزری, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ کلام سنا کہ جو حقداروں کو حق دیتا ہے, اور وہ ذات جو یا ایھا الناس کہہ کے ایمان والوں کو نہیں کفر والوں کو بھی پکارتی ہے, اور وہ ذات جو من یجیب المضطر اذا دعاہ, کہ جو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنے, چاہے وہ مستر اور بے چین نان مسلم ہی کیوں نہ ہو, اللہ اس کا سنتا ہے. اس عورت کے دل میں گھر کر گیا, مسلمان ہو گئی. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ یہ عورت جو ہے وہ بے گناہ ہے, تو آپ نے اس کے لیے مسجد نبی کے ساتھ ہی ایک چبوترہ بنوا دیا اور وہاں وہ رہنے لگی. سارا دن مسجد نبی کو صاف کرتی, اس کی ٹیک کیئر کرتی, فارغ وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ بیٹھنے لگتی. وہیں بیٹھتے ہوئے ایک شعر بہت پڑھا کرتی تھی, اور وہ شعر کیا تھا کہ وہ ہار کی چوری کا دن بھی میرے رب کی قدرتوں کا ایک عجیب مظہر تھا کہ جو مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لے آیا. ایسے سائنز آپ بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈا کریں. کبھی آپ پہ کوئی الزام لگ سکتا ہے, کبھی کوئی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے, کبھی مایوس نہ ہو, ان کے لیے دل میں ہمیشہ خیر رکھیں اور اس رب سے خیر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میرے لیے خیر کر دے. انشاءاللہ اس پہ مزید بات حضرت عائشہ پہ لگے ہوئے الزام کے بارے میں سورت نور میں بھی آپ دیکھیں گے. اور وہ ہار کی چوری کفر سے اسلام پہ لے آئی. اور اسی عورت کا جب انتقال ہوا, اللہ کے نبی کو صبح پتہ چلا کہ وہ عورت کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اس کو دفن بھی کر دیا, خود ہی جنازہ پڑا. یہی سوچا ہوگا نا, بیچاری ہے, کیا ہے اس کا, چھوڑو. آپ نے کہا کدھر؟ کہا اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہوا. کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ دلونی علی قبریہا, مجھے اس کی قبر کی دلالت کرو. پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. کبھی کسی شر کو شر نہ سمجھیے. اگر کبھی آپ پہ شوہر الزام لگا دے, کبھی سسرال والے الزام لگا دیں, کبھی آپ خود کسی پہ لگا دیں, ہر لمحے یہ ضرور دیکھیے کہ پیچھے سے کچھ نگاہیں ایسی ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ ذات جس کی نظر بندوں کے اعمال پہ نہیں, جس کی نظر بندوں کے دلوں پہ ہے. اپنی زندگی میں اس چیز کا پکا اقرار کر لیجئے, چھوٹی بات ہو یا بڑی, چاہے وہ ایک پینی کا نقصان ہو یا ہزاروں کا, میں نے کبھی اپنا جرم کسی دوسرے کے پلے میں نہیں ڈالنا. انشاءاللہ تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ, ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں, ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے یہ کام کرے, اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے, ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ توجہ کرے گا, اور دوزخ میں ڈال دیں گے, وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. یہ تھی آیت نمبر 114 سے 115. اس کا عنوان ہے جدھر چلنا چاہو گے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے. اسی طرح ایک دوسرا ٹاپک بھی آپ اس کا لکھیں گے, اور وہ کیا ہے, سرگوشیوں کی اجازت نہیں مگر. اب مگر کیا ہے, اس کا تذکرہ ان آیتوں میں, تین کاموں کا تذکرہ آ گیا ان آیات میں, کہ جس کی اجازت جو ہے وہ بندے کو اجازت ہے ورنہ نہیں. دراصل یہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے, اس شخص نے راتوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو بات چیت کی تھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ راتوں کو بیٹھ کے مشورے کیا کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. عموماً دیکھیے कि सरगोशी कहाँ होती है, जहाँ हमने कोई बात किसी दूसरे से छुपानी होती है, और उस बात को छुपाने की कोशिश में बाज दफा इंसान फिर जुल्म भी करने लगता है। अल्लाह सुबहाना ताला की बात करने वाला शख्स, जो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब उन्होंने दीन हक की बात की तो लोगों को आपकी बात अपनी जात पर एक तनकीद लगी, और उनको ये बात एक ऐसा तराजू लगा कि जिसके अंदर अब लोग तुलने लगे। एक ही मियार रह गया था लोगों को परखने का, और वो क्या था कि कौन इस शख्स की तालीमात के हक के मुताबिक है और कौन इससे खिलाफ है। ये मियार जो था, ये बहुत सारे लोगों को, जो बहुत बा वजन थे कल तक उस सोसाइटी में, उनको बेवजन करने लगा। ये चीज लोगों को पसंद ना आई और वो अल्लाह के नबी के खिलाफ हो गए। यही बात आज भी है, जब कोई हक की आवाज पुकार लेता है तो लोगों को जब उसके अंदर अपना वजन कम होता लगता है तो लोग उस शख्स की दुश्मनी पे आने लगते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से, लेकिन क्यामत तक के लिए हर हक वाले के बारे में ये बात कह दी कि जो शख्स जानते बूझते किसी हक वाले को तकलीफ देगा और उसकी बात को अल्लाह की बात के खिलाफ की बात समझाएगा और अपनी ख्वाहिशों के दीन को पैदा करेगा, बढ़ाएगा, तो कल क्यामत के दिन उनका हाल क्या होगा कि नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। अब देखिए कि अल्लाह ताला इस बात को बर्दाश्त कर लेता है कि लोग उसको ना माने। ये जुमला लिख ले, अल्लाह ताला कुफर को बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अल्लाह ताला जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, कहते हैं कि कोई हुकूमत कुफर पे तो कायम रह सकती है, और आज इसकी दलीलें आप देखिए माशाल्लाह, दुनिया में कितने नॉन मुस्लिम मुल्क है और अल्लाह ने उनको दुनिया की नेमतें भी दे रखी है। कोई मुल्क किसी कुफर पे तो कायम रह सकता है लेकिन कोई हुकूमत जुल्म पे कायम नहीं रहती। ये जुल्म हुकूमत की सतह पे होगा, वो मुल्क टूट जाएगा। ये जुल्म किसी खानदान की सतह पे होगा, वो खानदान जरूर टूटेगा। ये किसी इदारे में जुल्म होगा, वो इदारा जरूर टूटेगा। और किसी इंसान की जात के नाते से किसी पे जुल्म होगा तो उस वक्त भी ये जुल्म, ये चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी चीज अल्लाह ताला ने यहाँ जो दी वो बड़ी ही खूबसूरत है कि नुवल्ली ही मातवल्ला। बस दफा इंसान किसी एक चीज की तरफ माइल होता है, फिर वो समझता है कि बस यही चीज मेरे लिए है, लेकिन थोड़े दिन के बाद शैतान जब उसके ऊपर हमला करता है और उस को उसके लिए मशकूक कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता वो दिल जिसके अंदर दीन की मोहब्बत थी वो दुनिया के तमाशों में खोने लगता है। नतीजा क्या होता है कि फिर वही काम उसके लिए करना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये कानून हम सबको दे दिया कि तुम जिस रास्ते पे चलोगे मैं वही रास्ता आसान करूंगा। अगर तुम मस्जिद में जाने के लिए निकलोगे तो तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ चलेंगे, अगर तुम सिनेमा घर जाना चाहोगे तो तुम्हारे कदम सिनेमा घर में चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि घर से कोई सिनेमा के इरादे से निकले और वो मस्जिद में पहुंच जाए, और ये नहीं हो सकता कि कोई घर से बाजार के रास्ते में निकले और वो मस्जिद में पहुंच जाए। लिहाजा सबसे बड़ा इम्तिहान इरादे का इम्तिहान है। हम सब अपने इरादों की जद में, हम जिस चीज का इरादा करते हैं वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर हम नेकियों का इरादा करते हैं तो वो नेकी आसान हो जाती है, और जब हम गुनाहों का इरादा करते हैं तो वो गुनाह हमारे लिए आसान होने लगता है।